बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी गौरी कि अब तनाव मुक्त जीवन का जो आधार है वो क्या है। हमारी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है जितना कि हम उनको समझते हैं। खुदा परमात्मा सर्वशक्तिवान हजार बुझाओं वाला हर समय हमारे साथ में है। उस जीवन को अपने जीवन में लाने के लिए, परमात्मा को अपने जीवन में लाने के लिए हमें भी खुद पहल को करना पड़ेगा और आगे आना होगा। तो अभी एक बारी फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी आगे आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी पीछे बैठे हुए हैं आगे आ जाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर प्रेम मसन जी हैं। आज का हमारा विषय है राजयोग फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग। इस विषय में हमें गाइड करेंगे डॉक्टर प्रेम मसन। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी हमारी बहनों से कि वो बैजेस के द्वारा और पुष्पों के द्वारा स्वागत करेंगे भाई साहब का। मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी, आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आपने 1979 में मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमजी करने के बाद भारत एवं विदेश में अनेक हॉस्पिटल्स में लगभग 20 वर्षों तक कार्य किया। आप वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू राजस्थान के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। आप स्वयं लगभग 23 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आपने अनेक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनिंग में भाग लिया है। आपने होलिस्टिक हेल्थ, तनाव मुक्त जीवन शैली, व्यसन मुक्त जीवन को अपनाने, हेल्दी लाइफस्टाइल की जागरूकता के लिए अनेक अभियान चलाए हैं। हेल्दी लाइफ, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ एम्पावरमेंट, लीडरशिप स्किल्स, रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड आदि विषयों पर अनेक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन, हॉस्पिटल्स तथा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपने 1500 से भी अधिक लेक्चर्स दिए हैं। आपने 6000 से भी अधिक मीडिया प्रेजेंटेशंस दिए हैं। आपके मोटिवेशनल लेक्चर्स लोगों में नया जोश व शक्ति भर देते हैं और हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। आइए उन्हीं के द्वारा हम जानेंगे कि अपने जीवन को कैसे राजयोग के द्वारा तनाव मुक्त बना सकते हैं। डॉक्टर प्रेम हसन।
ओम शांति। मैंने देखा काफी सेशन लंबे हो गए थे और आप लोग फुल अटेंशन से सुन रहे थे, तो मैं अभी थोड़ा रिलैक्स कराता हूँ। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है और उसके कारण आज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, मोर देन 177 कंट्रीज में ये सेलिब्रेट किया जाएगा। आज हम भी सेलिब्रेट करेंगे, खड़े हो जाते हैं और अपने को चार्ज करेंगे, फिजिकली चार्ज करेंगे, मेंटली चार्ज करेंगे और साइकोलॉजिकली चार्ज करेंगे।
अरे ठंडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पथवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहाकार, तू है आ बस तू भाग मिलखा, ओ बस तू भाग मिलखा, भाग मिलखा, भाग 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 Oh, Kashti.
Shanti. Today there is no trade without any tension. Today there is no profession without any pressure. Today there is no sphere without any stress. और आज का ये session में अब हमें turn करना है pressure को pleasure में, burden को blessing में और stress को success में.
एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री में, उसमें था एजुकेशन के पांच डायमेंशन है. एक डायमेंशन है इंफॉर्मेशन, दूसरा डायमेंशन है साइंस, तीसरा है आर्ट ऑफ लिविंग जो आज मिस हो रहा है. इंफॉर्मेशन है, साइंस है, पर हम लोगों से कैसे बात करें, क्या बोलें, कितना बोलें और हमारे घर को वर्क को कैसे ठीक करें. चौथा है हॉबीज. स्ट्रेस का एक कारण भी होता है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी हॉबीज को, जो बचपन में मेरे को अच्छा लगता आया है एज ए चाइल्ड, वो करना भूल गया. मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं, पर मेरे अंदर जो बच्चा है वो हमेशा रहता है. उस बच्चे को एक्टिव करना ही स्ट्रेस मैनेजमेंट है. पांचवा, आर्ट ऑफ डाइंग. अब ये पांचवा सब्जेक्ट बड़ा टिपिकल है, आर्ट ऑफ डाइंग. अब सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा तनाव कहां से आता है? हाँ बताएं. यस चंदा बहन, इंटरेक्ट करो. तनाव के मुख्य कारण आपके इसमें क्या हैं? मैं लास्ट टाइम ऊपर सीआरपीएफ ट्रेनिंग कॉलेज है और वहां पर आए हुए थे आर्मी के सोल्जर्स, सीआरपीएफ के सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, और वो लोग वहां पोस्टेड थे जहां नक्सलाइट एरिया है। अब उन लोगों का कहना था कि हमारे स्ट्रेस के दो एरिया हैं, एक यहां पर और एक जब हमारी पोस्टिंग होती है शांति वाली जगह। मैंने उनसे पूछा स्ट्रेस कहां ज्यादा होता है, फ्रंट पर या जब आपकी पोस्टिंग शांति वाले इलाके पर है। बड़ा अच्छा आंसर आया, उन्होंने कहा जब हमारी पोस्टिंग शांति वाली जगह होती है वहां स्ट्रेस ज्यादा होता है। वहां क्यों नहीं होता है जब फ्रंट पर है? उन्होंने कहा फ्रंट पर हमारा केवल एक ही मुकाम रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है, लड़ना है। वहां हमारा अंदर का नेगेटिव माइंड काम ही नहीं करता है, क्योंकि जो सामने है पकड़ना है या मारना है या कुछ एक्शन करना है, एक्शन ही वहां है। तो उनका स्ट्रेस वहां इतना नहीं था जितना पीस पोस्टिंग में था। अब मेरे को क्लियर नहीं है, चंदा बहन बताएंगी पीस पोस्टिंग में क्या हो गया।
आप बताइए सारे दिन में आपके साथ कितनी ऐसी बातें होती है जो आपको अच्छी लगती हैं और कितनी ऐसी बातें होती है जो आपको नहीं अच्छी लगती, ज्यादा कौन सी होती हैं, अच्छी लगने वाली या ना अच्छी लगने वाली? ना अच्छी लगने वाली ज्यादा वही होती है सारे दिन में। उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? अनकंफर्टेबल और गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन, ओके, और तनाव, और भी कुछ? जब कुछ नहीं अच्छा लगता है वो फीलिंग जो है, तो उस समय वो कैसे निकलती है आपकी वो फीलिंग? फ्रस्ट्रेशन में, ओके, और वो फीलिंग से फिर नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है? काफी समय, कितना टाइम? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, फिर भी कितना? महीनों, सालों, कुछ घंटे, या कहते रात गई बात गई, बस एक बार एक नींद ले ली सब भूल गए, स्ट्रेस पूरा हो गया, ऐसा है? लेकिन शुरू में जब कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती उसको कहते हैं प्रेशर, और जब वो प्रेशर लंबे समय तक रहता है तो वो हो जाता है टेंशन। और जब उस टेंशन को हम मैनेज नहीं करें तो महीनों महीनों सालों तक अगर कंटिन्यूस उस टेंशन में रहें तो वो बन जाता है स्ट्रेस।
स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट स्ट्रेस सडन होता है, और आज हम सभी जानते हैं वो स्ट्रेस कहीं भी हो सकता है, चाहे मैं घूमने गया हूं, तीर्थ पर गया हूं, फ्लाइट में जा रहा हूं, पता नहीं कब क्या होगा, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, और वो ऊपर वाला भी कहता है वो तेरे को ही सोचना है, तेरे को ही हैंडल करना है। एक्यूट स्ट्रेस कभी भी आ सकता है, इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनुष्य का है क्या होगा, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज द बिगेस्ट किलर। क्या होने वाला है, अभी ठीक था और अभी हार्ट अटैक हो गया, अभी ठीक था अभी किसी को मार दिया, अभी ठीक था अभी सुसाइड कर लिया। अब ये तरह की एक्टिविटी अब हम देख रहे हैं बहुत हो रही है। अब क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल, इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। हमारा थिंकिंग ब्रेन है और हमारा इमोशनल ब्रेन है, लोअर ब्रेन एंड हायर ब्रेन। अभी ये देखा जा रहा है हमारा हायर ब्रेन कम काम कर रहा है, लोअर ब्रेन इमोशनल ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, और इसीलिए हमारा नेचर रिएक्टिव हो गया है, एक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और जब कभी भी हम रिएक्ट करेंगे हमारा एड्रिनल बॉडी में एड्रिनल छोड़ेगा, और जब कभी भी एड्रिनल निकलता रहता है बिना कारण से वो बॉडी को डैमेज करता है, बीमारियां लाता है। इसीलिए मैं कहूंगा नंबर वन किलर है एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। सबसे ज्यादा तनाव कब आता है? जब हम वेट कर रहे हैं, एंटीसिपेट कर रहे हैं। स्टेशन पर गया हूं, ट्रेन आई नहीं है, ट्रेन का समय 6 बजे है, मैं देख रहा हूं कब ट्रेन आ रही है 15 मिनट से, ट्रेन नहीं आई। डॉक्टर का वेट कर रहा हूं, मैं हमेशा देखता हूं हमारे यहां नीचे कुछ काम नहीं है, लोगों को आराम से देखना है, वेट करना है, पर फिर भी क्या होगा, 4-5 लोग क्या करेंगे, दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे, कब मेरा टर्न आएगा। और वो बिठा रहा है फिर भी वो खड़े हो जा रहे हैं, कब मेरा टर्न आएगा। तो ये क्या कर रहा है, बॉडी में एड्रिनल छोड़ रहा है, एड्रिनल पंप लगा हुआ है किडनी के ऊपर, और यही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जब कभी भी हम बिना कारण से चिंता कर रहे हैं, दबाव बना हुआ है, क्रोनिक स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, बिना कारण से हम दुखी हो रहे हैं, बिना कारण से चिंता कर रहे हैं, बिना कारण से गुस्सा कर रहे हैं, बिना कारण से अपसेट हो रहे हैं, एड्रिनल जा रहा है और वो कहीं ना कहीं बॉडी में डैमेज करता है। इसी के कारण हमारे देश में पहला किलर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, दूसरा है डायबिटीज टाइप 2, कैंसर, आर्थराइटिस और अल्सर। ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन। डिप्रेशन अब एक बड़ा प्रॉब्लम मुद्दा आ गया है जिसको आने वाले समय में हम सभी को हैंडल करना पड़ेगा, और उसका भी कारण है कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तनाव का दूसरा कारण है जो मैं कर रहा हूं अच्छा मजा नहीं आ रहा, कर रहा हूं, करना है, चॉइस नहीं है, करना है, तो उसके कारण मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है। इसीलिए आजकल कहा जा रहा है, बच्चों को भी बोला जा रहा है, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो काम को सिलेक्ट करो जो अच्छा लगता है। आपका जॉब भी बड़ा अच्छा रहता है, थ्रिलिंग है, एक्शन है, कहीं जा रहे हैं, नया सीन ले रहे हैं, ऑल द टाइम थ्रिलिंग है। अब उस थ्रिल को एंजॉय करना है, उसको अच्छी तरह प्यार से करना है। मुझे याद आ रहा है स्टीव जॉब का, जो CEO था एप्पल कंपनी का, और उसने उस कंपनी को टॉप पर ले गया, 0 से टॉप पर ले गया, एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल CEO ऑफ दैट टाइम। लोगों ने, ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर। लोगों ने उससे पूछा आप टॉप पर कैसे गए, तो उसने कहा पहला, हर दिन जब मैं उठता था अपने से पूछता था आज का दिन अगर आखिरी है तो मुझे क्या करना है, इफ टुडे इज माई लास्ट डे व्हाट आई एम सपोज टू डू इट। अगर आज का दिन भगवान ने सुबह दिया है, उठा हूं, हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान ने मुझे ना क्या हुआ, आज कुछ करना है, आज का दिन उसने दिया है मेरे को, तो आज के दिन मेरे को 100% करना है। मैंने जो एक ही बात सीखी, जो काम मैं करूं उसको 100% करूं और प्यार से करूं, चाहे वो छोटा जॉब है चाहे बड़ा जॉब है। मैं हमेशा नीचे देखता हूं शांतिवन में, हमारे यहाँ कई वर्कर्स ट्राइबल लेडीज काम करती हैं, और मैं देखता हूं जब 20,000 लोग आते हैं हमारे यहाँ, 25,000 लोग आते हैं, उनके सामने कई बर्तन पड़े रहते हैं। आप सोचो 25,000 लोगों ने खाना खाया और बर्तन ही बर्तन। अब मैं देखता हूं जिस मूड से वो सुबह आती हैं उसी मूड से वो रात को जाती हैं हंसते हंसते। फिर मैंने देखा जब वो काम करती हैं बना गीत गाकर मजे से उसको साफ करती रहती और गीत भी गाती रहती, मैंने आज तक नहीं देखा उनके चेहरे पर कोई स्ट्रेस था।
आपको सारे दिन में कभी ऐसा लगता है कि, या एक भी विचार आता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है? लगता है? कितनों को लगता है हाथ खड़ा करें? एक बार दिन में एक बार लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी फीलिंग? अगर ये थॉट आता है, माना डिप्रेस्ड है। एक गाड़ी के पीछे लिखा था, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। इतनी हाइट ऑफ इम्पेशेंस हो गई है आज समय अनुसार। तो आज हर मानव के अंदर जो शुरुआत है स्ट्रेस की, वो इसी फीलिंग से है, कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये अच्छा न लगना सिर्फ बाहर से नहीं है, समथिंग जो एक्सटर्नल नहीं है सिर्फ। वैसे तो हम ब्लेम कल्चर में जी रहे हैं, बहुत आसान है दूसरों को ब्लेम करना। एक मदर इन लॉ कहती है, जब से डॉटर इन लॉ आई है ना, तब से मेरा बीपी हाई हुआ है, मेरी एज है, मैं स्ट्रेस ले रही हूं, वो नहीं सोचेगी, लेकिन जब से वो आई तब से हुआ। डॉटर इन लॉ कहती है कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स के कारण मदर इन लॉ है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहते हैं पेरेंट्स सुनते नहीं हैं। टीचर्स कहती है कि पेरेंट्स ठीक पालना नहीं देते, पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर्स ठीक पढ़ाती नहीं है। सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अपने स्ट्रेस के लिए जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो क्या होता है, पता है? फायदा है या नुकसान है? है तो बहुत आसान ब्लेम कर देना, इनके वजह से मुझे हुआ। बट दिस इज लग्जरी वी आर एंजॉइंग, जस्ट टू ब्लेम, बिकॉज मुझे चेंज होना नहीं है। इसीलिए, क्योंकि स्ट्रेस मुझे ये मैसेज दे रहा है दैट यू हैव टू चेंज। आप जिस सीट पे बैठे हैं और अगर वहां पे कोई नेल है, आपको प्रिक कर रहा है, दर्द हो रहा है, तो भी आप उधर ही बैठे रहेंगे? नहीं। अगर मेरे पास कोई टूल्स नहीं है कि मैं उस कील को निकाल सकूं, तो क्या करूं? चेंज कर ले। तो चेंज हमें करना है, लेकिन वो हमसे होता नहीं, इसलिए हम ब्लेम कर देते। और ब्लेम करने से हमारा ये नुकसान होता है कि मान लीजिए, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक सिचुएशन विजुअलाइज करिए, मान लीजिए आपके जिंदगी में कोई नुकसान हुआ है और वो किसी व्यक्ति की वजह से हुआ है, तो आप क्या करेंगे? शेयर करेंगे सबको, अरे इसने ऐसा किया ऐसा किया, ब्लेम करेंगे और इंतजार करेंगे कि वही आकर के वो बात ठीक करे जो गलत हुई है, जो नुकसान हुआ है। लेकिन अगर वही लॉस जिंदगी में नेचुरल कैलामिटी के कारण हुआ है, ठीक है, बुरा लगेगा, शेयर करेंगे किसी से, लेकिन इमीडिएटली एक्शन लेंगे उसे ठीक करने के लिए। अब तीसरी सिचुएशन विजुलाइज करिए, वो लॉस हुआ है हमारी अपनी मिस्टेक के वजह से, तो आप क्या करेंगे? ठीक करेंगे, छिपाएंगे, क्या करेंगे? सफाई देंगे और ठीक नहीं करेंगे, इतना फास्ट ठीक करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि इतना नुकसान हुआ था, इतना फास्ट ठीक करेंगे। मतलब हमारे में वो पावर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उस बात को ठीक करने की, प्रोवाइडेड हम दूसरों को ब्लेम न करें। जैसे ब्लेम करते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि वो आके ठीक करे।
लाइफ में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, लाइफ में रिमोट कंट्रोल हमारा खुद का रहता है और हमें ही उठकर उसको ठीक करना पड़ता है। LIFE, लाइफ का अर्थ है LIFE, लव इनसाइड फायर एक्सटर्नली, लव इनसाइड फायर एक्सटर्नली। पहला काम हमें करना है अंदर अपने को प्यार करना है, सुबह उठकर खुद को प्यार करें, हाँ राइट हैंड ऊपर करें और अपने को प्यार करें। टुडे इज अ गुड डे, आज का दिन बहुत अच्छा है, बोले आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन नया है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सुबह उठकर अपने को चार्ज करें, फिर जब ऑफिस जाते हैं, प्रॉब्लम तो हर जगह हर प्रोफेशन में है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। जॉब स्ट्रेस का कारण अलग अलग होता है और वो कारणों को हमें देखना पड़ता है, किस कारण से मेरे को तनाव आ रहा है और उसको आइडेंटिफाई करके, जैसे सिस्टर ने कहा, ठीक करना पड़ता है। तो पहला प्यार करें खुद को और अपने को चार्ज करें। इंग्लिश का शब्द है ILL, इल। इल का अर्थ है आई लैक लव। बीमारी कहां से आई? बीमारी का पहला कारण क्या हुआ? कहीं ना कहीं मैं अपने से अलग हो गया, अपने को प्यार नहीं कर रहा हूं, मटेरियल को प्यार कर रहा हूं। पहले क्या होता था, जब लोग जंगल में जाते थे, घर बार छोड़कर जाते थे, खाना छोड़कर जाते थे, तो वो लोग संत कहलाते थे। अब आज के समय में वो ही लोग क्या हो गए? एम्प्लॉइज हो गए। हम भी सभी 14 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं, कभी खाना टाइम पर रहता है, कभी नहीं रहता है, घर से दूर रहते हैं, अलोन रहते हैं। ये सब फैक्टर्स सब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सोसाइटी है। तीन चीजें बदल रही है, मेल्ट हो रही हैं, एनवायरमेंट मेल्ट हो रहा है, इमोशंस मेल्ट हो रहे हैं, और इकोनॉमी मेल्ट हो रही है। इन तीन मेल्टिंग के कारण हमारे अंदर का जीवन भी मेल्ट हो रहा है। इसको ठीक करना है तो फिर से खड़े हो जाइए और चलिए। अर्चना बहन म्यूजिक टीचर हैं आबू रोड में स्कूल में, और संगीत में इन्होंने एमए किया हुआ है। बहुत अच्छा गीत गाएंगी और हम सब अपने को प्यार करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने को।
निभाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है STRESS, स्ट्रेस। पहला एस का मतलब है जो सिस्टर ने बताया, शेयर। जब कभी भी लगे तनाव बढ़ रहा है उसको कम करना है, शेयर करो। ये देखा गया जो पति सुबह घर से निकलते हैं और अगर उनकी पत्नी उनको कुछ अच्छे शब्द बोलती हैं, पॉजिटिव बोलती हैं, अपना ध्यान रखना, आई लव यू, उनको हार्ट अटैक कम होते हैं। अब शुरू में क्या होता है, शादी के तीन एक साल दो साल तक तो बाहर आती है, कहती है, दो साल के बाद रोज ही जा रहा है, रोज ही आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन, शेयर। जितना हमें सपोर्ट मिलेगा, एस का अर्थ है शेयर एंड सपोर्ट। अगर शेयर एंड सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, बॉस अच्छा है, लोगों को तनाव जो आता है, मैंने जितना पूछा कॉरपोरेट सेक्टर में, ज्यादातर आंसर आया मेरा नेक्स्ट बॉस। कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं, स्टडी किया, बोला हम कंपनी को नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपने बॉस को छोड़ रहे हैं। अब बॉस शब्द बड़ा स्ट्रेस देता है, उसको कैसे ठीक करें?
सभी अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अलग अलग, जैसे किसी ने शेयर किया कि हमारे कंपनी में नीचे बेसमेंट में एक रूम बनाया है, डिम लाइट रूम, और उसमें जो भी पोजीशन होल्डर्स हैं, इमीडिएट बॉसेस हैं, उनके फोटो लगाए हैं, और सारे दिन में जिनको भी जिनसे स्ट्रेस होता है वो उस रूम में जाते हैं और उनके फोटो पर नेल प्रिक करते हैं। ऐसा किसी ने सुनाया। दूसरे ने सुनाया कि हमारे इसमें मेडिटेशन रिलैक्स रूम, योगा रूम किया है कि किसी को भी स्ट्रेस हो तो वहां पे जाकर के रिलीज कर दे। कोई है जो
प्रॉब्लम नहीं आएगा, लोग वहीं बैठे रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे,
नहीं उसकी भी लिमिट है टाइम। और कोई है जो फिर अपना स्ट्रेस पास ऑन कर देते हैं, जैसे स्ट्रेस तो कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई अपने पास तो रखेंगे नहीं। एक व्यक्ति जो ऑफिस का स्ट्रेस घर में लेकर आया तो उसने क्या किया, गुस्सा करके सारा वाइफ के ऊपर निकाल दिया। अब वाइफ क्यों रखने लगी अपने पास, कोई स्ट्रेस अच्छी चीज थोड़ी ना है। उसने क्या किया, चिल्लाकर सारे बच्चों को पास ऑन कर दिया। अब बच्चे क्यों अपने पास रखने लगे, उन्होंने क्या किया, घर में पेट डॉग था, उस पेट डॉग को छेड़ दिया और पेट डॉग ने क्या किया, जाके मालिक को काट दिया। तो ये एक विशेष साइकिल है, ये कोई तरीका नहीं है कि हम स्ट्रेस को पास ऑन करें और शेयर करें। लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जैसे डॉक्टर ने बताया, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनल भी हैं। एक्सटर्नल भले हम नहीं कर सकते, जैसे काफी ऐसी बातें हैं लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, ट्रैफिक जैम, ये फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज आएगा इंटरनल एडजस्टमेंट से। एक बार एक दूध बेचने वाला था जिसका रोज काम था कि गांव से शहर जाता था दूध बेचने के लिए साइकिल पे, दो कैंस अपने दोनों साइकिल के बाजू में रखता था। एक दिन इसी तरह वो दोनों ही दूध के कैंस लेकर के जा रहा था, कहीं साइकिल रोकी, वहां पे कुछ बच्चे थे, खेल रहे थे, उनको शरारत सूझी। बच्चों ने क्या किया, दो मेढक पकड़े, एक मेंढक पकड़ के एक में डाला, दूसरे को दूसरे में डाला। अब दोनों के साथ क्या हुआ सुनना। पहले कैन के पहले मेंढक ने सोचा, अरे ये मैं कहां फंस गया, ऐसा लिक्विड तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, करो तो क्या करो, अब मुझे यहाँ कौन बचाएगा। ढक्कन खोलने की कोशिश करे, वो भी नहीं हो रहा है, करे तो क्या करे, अब तो गई जान। और दूसरे कैन के दूसरे मेंढक ने सोचा, अरे ये मैं कहां फंस गया, ये तो ढक्कन भी नहीं खुल रहा है मुझसे, इतनी ताकत भी नहीं है मेरे में, ऐसा लिक्विड तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, करो तो क्या करो। हाँ, पर मैंने एक बात जिंदगी में सीखी है और वो है टू स्विम इन द लिक्विड्स। वो स्विम करता रहा करता रहा करता रहा, लंप ऑफ बटर जमा हो गया, उस पर आराम से बैठ गया। और जब शहर आया, दूध बेचने वाले ने दूसरा कैन खोला तो इमीडिएटली एक फ्रॉग जंप करके निकला, और पहला कैन खोला तो उसमें से एक अनकॉन्शियस फ्रॉग निकला। सिचुएशन सेम थी लेकिन रिस्पॉन्स अलग था। तो हमें अपने अंदर एडजस्टमेंट करनी है।
प्रेशर्स हमेशा रहेंगे, प्रॉब्लम रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक दिन भी अगर आपका बिना प्रॉब्लम के जाए, समझना कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। तो प्रेशर्स प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं। और पहला जैसे बताया, एस का अर्थ है सोल्यूशन एंड शेयर एंड सपोर्ट। पहला काम करें कि क्या सोल्यूशन है मेरे पास। जैसे बताया, फ्रॉग ने देखा मैं इसको क्या कर सकता हूं, तो उसने उसका बटर बनाकर बाहर आ गया। सोल्यूशंस आर ऑलवेज देयर। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। वो सोल्यूशन हमारे अंदर है। अगर जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन है। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट किया है मैंने ही, और मेरे पास ही उसका उत्तर है, तो हम उस समय उस सोल्यूशन को देखें, प्रॉब्लम को ना देखें। और अगर सोल्यूशन बाहर आएगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा,
ये जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ फोकस एंड अटेंशन। अगर हम फोकस प्रॉब्लम पे करेंगे तो नेचुरली वो बढ़ती जाएगी, और अगर हम फोकस सॉल्यूशन पे करेंगे कि अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जो हुआ तो हुआ लेकिन अब करना क्या है, जनरेट ऑप्शंस, और उसमें से जो ऑप्शन पसंद आए उस पर वर्कआउट करें, नई वर्क हो रहा है, जनरेट न्यू ऑप्शंस एंड मूव फर्दर इन लाइफ।
टी का अर्थ है ट्रैफिक कंट्रोल। सिस्टर ने बताया, बड़े शहरों में ट्रैफिक के कारण स्ट्रेस रहता है, पर ये हमारे अंदर का ट्रैफिक कंट्रोल है। मेडिटेशन का अर्थ है मैं अपने थॉट्स को चैनलाइज कर रहा हूं। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन है, वो थॉट्स मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट कौन सा होता है, सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट कौन सा होता है जो हमें रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। हाँ बताइए। बच्चों में भी आ जाता है, यंगस्टर में आ जाता है, और वो आ गया एक बार अंदर तो पूरा मैकेनिज्म को खराब कर देता है, पूरा वायरस करप्ट कर देता है। वो कौन सा नेगेटिव थॉट, फियर, फियर ऑफ व्हाट, हमने एक डिस्कस कर लिया, अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ डेथ, वो भी आता है। पर सबसे अच्छा बात क्या हुआ, आज पहले लेसन में आपने क्या सीखा, सुबह पहला लेसन क्या था मॉर्निंग में, आज किन्होंने अटेंड किया मॉर्निंग सेशन, क्या था आत्मा का, आत्मा से मैंने क्या सीखा, उसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा लाइफ में। फर्स्ट लेसन जो है ब्रह्म कुमारी का, जिसके कारण मैं भी आगे बढ़ा, और उसी के कारण पूरा साइकोथेरेपी है, साइकोलॉजी पूरी फर्स्ट लेसन पर डिपेंड करती है। और ह्यूमन नेचर के सब प्रॉब्लम पहले लेसन के हैं। पहले लेसन से मैंने क्या सीखा, आत्मा अमर अजर अविनाशी है, तो मेरा डर डेथ का खत्म हो गया। लाइफ इज इटर्नल. मैं चल रहा हूं, मेरा साइकिल इटर्नल है. लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, लाइफ इज अ डेथ, डेथ इज अ रीबर्थ, हैप्पी इज वन हु इज बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ बोथ. खुश वो है जो दोनों के ऊपर होकर काम कर रहा है. मेरा अगर फिजियोलॉजिकल जन्म है तो फिजियोलॉजिकल डेथ भी है. तो वो जब डर निकल गया तो मेरा पूरा अंदर का डर खत्म हो गया. दूसरा सीखा हमने आज के लेसन से, हम सब यहां एक्टिंग करने आए हैं. हम सब बहुत अच्छे एक्टर हैं. इसीलिए चेतन भगत ने कहा, रतन टाटा ने कहा, डू नॉट बिकम सीरियस, बी सिंसियर. सिंसियर रहिए पर सीरियस नहीं हो जाइए. हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं. तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, सीरियस हो जाती है. मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जैसे सिस्टर ने बताया, सीरियस हो गया. कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सीरियस हो गया. तो कहीं ना कहीं जब मैं सीरियस हो जाता हूं तो बॉडी भी सीरियस होती है. इसीलिए देखा गया मंडे को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं. क्यों क्यों होते हैं? संडे को रिलैक्स किया, ऑफिस जाना है और ऑफिस में मजा नहीं आ रहा है, वही प्रॉब्लम बना हुआ है. कार में बैठा, गाड़ी चलाई और इमोशनल अपहीविल हुआ, कुछ घर का प्रेशर भी लेकर जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं. ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण देखा गया जब इमोशनल ब्रेन टेक ओवर कर देता है थिंकिंग ब्रेन को. ये मेरा पैट सब्जेक्ट है. थिंकिंग ब्रेन और इमोशन दोनों काम करते रहते हैं. लॉर्ड श्री कृष्ण और अर्जुना काम करते रहते हैं, दोनों अंदर काम कर रहे हैं. जब कभी भी अर्जुना इमोशंस टेक ओवर कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाता है. इसीलिए उस समय क्या करना है, लेट लॉर्ड श्री कृष्ण टेक ओवर इट. यानी बुद्धि काम करे, मन को कंट्रोल करे. सबसे बड़ा डर कौन क्रिएट करता है, हमारा खुद का मन. और वो नेगेटिव थॉट, मैं ठीक नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता, हो नहीं पाएगा, आई एम वर्थलेस. कई बार मेरे पास सीनियर डॉक्टर आकर बोले लेक्चर के बाद, आई एम वर्थलेस. मैंने कहा, यू आर वर्किंग, बट आई एम वर्थलेस. यू आर ए डॉक्टर? बोला, नहीं, आई एम वर्थलेस. उसको इतना साइकोथेरेपी किया फिर भी वो उसी पॉइंट पर आता था. मुझे एक बार याद है, एक यंग लड़का आया 13 साल का, उसको काउंसलिंग किया, सपोर्ट किया, और मैंने कहा, अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच. बोला, सर सोच ही नहीं सकता मैं, आप मेरे बारे में सोचो. अब ये नया पैटर्न आ गया है, ये नया फॉर्मेशन आ गया है कि अब मेरे को उसके बारे में सोचना पड़ेगा. इसीलिए अभी ब्रह्मा कुमारी का लेटेस्ट अपडेट क्या आया, मैंने इससे बहुत सीखा. इस अपडेट से आजकल कहा जा रहा है कुछ काम नहीं करेगा. पीटर ड्रकर भी बोल के गया था, मैनेजमेंट गुरु, जाने के पहले 2004-5 में, आने वाले समय में कुछ काम नहीं करेगा, ना मैनेजमेंट काम करेगा. लॉर्ड भगवान श्री सत्य साई बाबा ने भी जाने के पहले बोल के गए थे, ऐसा समय आएगा कि जब कुछ काम नहीं करेगा. क्या काम करेगा, क्या काम करेगा? वो अपडेट मेरे को यहां से मिला. वो अपडेट है, केवल एक चीज काम करेगी, वाइब्रेशन. किसी को भी ठीक करना है, करेक्ट करना है, फिजिकली मत करो. जितना करेक्ट करोगे उसका ईगो हर्ट होगा. आजकल हरेक का ईगो बढ़ गया है, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ गई है. हम सभी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, उस भाई ने बोला गाड़ी ठीक से चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, उन लड़कों ने उसको ही मार दिया. अब ये क्या दिखा रहा है, इमोशनल सेंसिटिविटी और ईगो हर्ट जल्दी हो रहा है. और कभी भी किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 10% प्रॉब्लम कहां से आते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के 10% प्रॉब्लम का कारण है, हर एक का ओपिनियन अलग अलग है, कंफ्लिक्ट है, होगा, उसको क्या करें? 10% अलग अलग हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या करें? और होगा, मैंने कहा एज ए डॉक्टर होगा, मदर का अलग होगा, बच्चे का अलग होगा, मेरे को क्या करना है? अब मैं उस समय कहूं जनरेशन गैप है, ये है, आज के बच्चे ये हो गए हैं, काम नहीं करेगा। आज के समय में क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 10% प्रॉब्लम अलग अलग ओपिनियन के कारण आते हैं। और उस पहला लेसन मुझे क्या सिखा रहा है आज का, पहला लेसन ने मुझे क्या सिखाया? हर आत्मा अलग अलग है, हर एक का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, हर एक का सॉफ्टवेयर अलग अलग है, तो वो कैसे सेम होगा? अलग अलग होना मींस थिंग्स आर राइट। अगर कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहा है यानी थिंग्स आर रॉन्ग, वहां का बॉस बहुत टाइट है, कोई उसके सामने बोल नहीं पा रहा है, तो सब अंदर ही अंदर रख रहे हैं। बीमारी का दूसरा कारण है जब हम बातों को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। घर पे नहीं बोल पा रहा हूं, वाइफ के सामने, ऑफिस में बॉस के सामने नहीं बोल पा रहा हूं, क्या होगा? सप्रेशन डिप्रेस इम्यून सिस्टम, जितना हम सप्रेस करेंगे उतना हमारा इम्यून सिस्टम लो होगा। तो क्या करना है? उसको अच्छी तरह एक्सप्रेस करें। आजकल बच्चे भी पूछते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल मेरा ओपिनियन ये है, बिल्कुल। हमें क्या करना पड़ता है? एग्री करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और 90% का कारण क्या है ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम का? कहीं ना कहीं किसी ने किसी की डिग्निटी को हर्ट कर दिया। वोकल कार्ड यहां लगा हुआ है, भगवान ने वोकल कार्ड यहां क्यों लगाया? यहां से इसका डिस्टेंस हार्ट से डिस्टेंस इक्वल है, तो क्यों लगाया यहां पर? वोकल कार्ड यहां लगा देता, यहां लगा देता, यहां क्यों लगाया? जब बोलो सोच कर बोलो, प्यार से बोलो। हर एक का अपना एक ईगो लेवल है, हर एक का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बनाकर रखो। चाहे वो वर्कर छोटा है, मेरे यहां आ रहा है, काम कर रहा है, क्लीनर है, उसका भी रिस्पेक्ट बनाकर रखो। आज के समय में कहीं भी हर्ट किया तो प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए 3 चीजें जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रीडम, डिग्निटी, पार्टिसिपेशन। ये 3 चीजें होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेस कम होगा, और वो बनाकर रखो। हरेक का रिस्पेक्ट दो। हरेक को क्या अच्छा लगता है? कोई मेरे को अप्रिशिएट करे, वाइफ ने खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं आकर खाकर चला गया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था। अब वाइफ क्या सोच रही थी? कोई अप्रिशिएट करे खाना कितना अच्छा लगा। फिर वो पूछते ना, कैसा लगा खाना आपको? इसका मतलब है उसको चाहिए अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन हर एक को चाहिए, इसीलिए जब मौका मिले अच्छी तरह अप्रिशिएट करो। मेरे पास भी बहनें आती हैं, कुछ स्वीट देती हैं, टोली देती हैं, वो पूछती हैं आप डॉक्टर हैं, आप मीठा तो नहीं खाते होंगे? अब मैं कहूं नहीं खाते हैं तो क्या होगा? अगली बार वो लाएंगे ही नहीं, तो मेरे को कहना पड़ता बहुत अच्छा लगा। फोन करके मेरे को उनको बोलना पड़ता बड़ा मजा आ गया, अभी मैंगो का सीजन है, मैंगो आ रहे हैं, जो ला रहे हैं ले रहे हैं, मना नहीं कर रहा हूं, चाहे मैं उसको शेयर करूं। पर क्या होगा जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो उनके अंदर का मोटिवेशन बढ़ता है। कभी भी किसी को नेगेटिव मोटिवेट नहीं करो, किसी की गलती को दूसरों के सामने ना बोलो, उसको अच्छी चीज सबके सामने बोलो, पर गलती को वन टू वन करेक्ट करो।
आपके घर में भी तो जब खाना बनता होगा तो पूछते होंगे ना कैसा बना है, कभी कभी पूछते हैं या एवरी मील्स के बाद? एवरी टाइम। सुना डॉक्टर प्रेम भाई, एवरी टाइम घर में पूछा जाता है खाना कैसे बना है।
इसका अर्थ क्या हुआ? आज मैंने ड्रेस अच्छी पहनी, वाइफ ने पहनी, वो बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट मुझे लगती है, वो शेव कर रहा है, जिलेट वाला शायद रेजर है, वाइफ आकर दिखाती है साड़ी ले लो, अब वो हूं कर देता है क्योंकि बोल नहीं पाता है, तो वाइफ साड़ी खरीद के ले आती है, पहन के आ जाती है, इतने में वो चेंज करता, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी लग रही हो, तो वो भी क्या कहती है, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हो। आजकल एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वन ऑफ द बेस्ट। कपल है, हस्बैंड वाइफ, नई शादी करके कार में जा रहे हैं, हस्बैंड थोड़ा पास में आता है कार में, वो और खसक जाती है, हस्बैंड बोलता है आपको जो अच्छा लगे मेरे को बता देना, जो अच्छा नहीं लगे बता देना, तो वाइफ कहती है मेरे को कोको कोला अच्छा लगता है, तो बेचारा वाइफ वो लेकर आता है कोको कोला, वो कहती है आप लो पहले, बोला नहीं तेरे को अच्छा लगता है ना, नहीं पहले आप लो, वो कोको कोला पीता है, मुझे आप भी अच्छे लगते हो, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है कोई आपको बोले अपना ध्यान रखना, टेक केयर, जब मैं घर से बाहर जा रहा हूं किसी ने कहा अपना ध्यान रखना, मैं अभी नीचे से अबू रोड से ऊपर आ रहा था, एक बहन ने कहा हैप्पी जर्नी, बड़ा अच्छा लगा ऊपर आ रहा था, कितने वर्ड्स हमें शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, और वही गुस्सा करके हम अपनी लाइफ को खत्म करते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं, जो लिमिटेड वैलिडिटी का सॉफ्टवेयर अंदर डला हुआ है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो याद आएगा, तो इसीलिए बीच बीच में अप्रिशिएट करो, सॉल्यूशन निकालो, ट्रैफिक कंट्रोल करो। आर, आर का मतलब है रीप्रोग्रामिंग, जो नेगेटिव प्रोग्राम अंदर गए हुए हैं वो बाहर आएंगे, उनको क्या करना है, रिप्लेस इट। मेडिटेशन का अर्थ क्या हुआ, नेगेटिव प्रोग्राम को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, उसको नया प्रोग्राम डाल रहा हूं। मैं अपना बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, मैं इंडिया में 92 में आया और 92 में मेरी पर्सनालिटी परफेक्शन की थी, परफेक्शन भी स्ट्रेस है, हर चीज ठीक होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, टाइम पर खत्म होना चाहिए, ये अभी भी मेरी है। मैं 6 बजे ही आ गया था, मेरे को 6 बजे बोला था, 6 बजे आ गया था, तैयार था। अब मैंने देखा जब गाड़ी में जा रहा हूं, मैंने सोचा आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, रास्ते में गाय बैल ट्रैफिक मोटर बाइक ये वो, बड़ा स्ट्रेस आता था, लोगों में अकल ही नहीं है, गाड़ी कैसे चला रहे हैं, गाय बैल छोड़े हुए हैं, जहां बैरियर है पुलिस का वहां गाय खड़ी मुस्कुरा रही है, पुलिस है ही नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लोगों में अकल ही नहीं है। 3 महीने निकल गए, देखा वो लोग तो वही कर रहे हैं, मोटर बाइक वाला यो चला गया, मेरा एड्रिनल निकल रहा है, लोग गवर्नमेंट अकल नहीं, मैंने देखा नुकसान तो मेरे को हो रहा है, इनको तो मजा आ रहा है, इवन गाय भी खड़ी मुस्कुरा रही है, गाय भी खड़ी मुस्कुरा रही है, मैं ठीक हूं, तेरे ही एड्रिनल काम कर रहा है। तब मैंने नया प्रोग्राम डाला, मैंने कहा ऐसा तो होगा नहीं, तो मैं अल्फा लेवल पर गया, चंदा बहन ने मेरे को रीप्रोग्रामिंग कराया, आई लव माई इंडिया, उन्होंने बोला आई लव माई इंडिया, गया अंदर, आई लव माई इंडिया, सब कॉन्शियस पे गया, कॉन्शियस माइंड जो बोलता है सब कॉन्शियस उसको रिकॉर्ड करता है, माइंड डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, हमारा मन फैक्ट क्या है फिक्शन क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं करता, अगर मैं कहूं मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, अगर मैं कहूं मैं ठीक हूं तो ठीक हूं। तो मैंने अंदर डाला, आई लव माई इंडिया. फिर बैठा, फिर गाय बैल मोटर बाइक ये ब्यूटिफुल, क्या मजा आ रहा है. मोटर बाइक वाला कितना रिस्क लेकर जा रहा है. हमारी गाय बैल तो देखो पुलिस का काम कर रही है, बिना सैलरी के काम कर रही है, ट्रैफिक को रोक रही है. मेरे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम पावरफुल है, इवन एनिमल्स भी इंजॉय कर रहे हैं. तो आपने क्या किया, हम सभी ने क्या किया, नेगेटिव को रिप्लेस करके आगे बढ़े. इसीलिए कहा हमेशा फ्लो होने दो, लेट इट फ्लो. जो हो रहा है फ्लो करने दो. लक्ष्मी को ऐसा क्यों दिखाया, लक्ष्मी ऐसा क्यों खड़ी है. लक्ष्मी भी कह रही है करेंसी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है. हम क्या कर रहे हैं लक्ष्मी को, सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं. तो हमारा मन शरीर को कहता है तू भी डिपॉजिट कर. तो हमारे जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं. इसीलिए सीएडी इज नंबर वन किलर. तो ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा, चलने दो, चलिए खड़े हो जाए. कुछ बोलना है आपको तो खड़े हो जाए. जय गणेश.
Never.
मिनट हाँ वाइंड अप करता हूँ। बैठिए, अब वाइंड अप करेंगे, टाइम 10 मिनट्स है। तो STR, अब ई का अर्थ है हर व्यक्ति को, हर घटना को अच्छी तरह हैंडल करो, एंजॉय इट, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको ठीक करना है, एंजॉय करना है, इम्पावर होना है। जितना इम्पावर होंगे उतना शक्तिशाली होंगे। गणपति का अर्थ ही है, लॉर्ड श्री गणेश का अर्थ ही है इम्पावर, पावरफुल। हर शक्ति मेरे अंदर है, उस शक्ति को एक्टिवेट करना ही मेडिटेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है। मुझे याद आया एक किताब लिखी है पॉजिटिव पावरफुल थिंकिंग, उसमें ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने 3 वर्ड दिए, एक था फेल, FAIL। फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल से कभी घबराएं नहीं, क्योंकि आज के समय दूसरा प्रॉब्लम है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। कल का मुझे याद आ रहा है जैन मुनि एक घटना बता रहे थे, दिल्ली में एक लड़की को 94% आए, मेडिकल एग्जाम था, हमेशा फर्स्ट आती थी, 8th से लेकर अभी तक फर्स्ट रैंक, फाइनल एग्जाम में 2nd रैंक आई, सुसाइड कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसने बताया मेरे फादर ने कभी नहीं बताया कि तू 2nd भी आ सकती है। अपेक्षाएं अच्छी हैं, पर उनको हमें मैनेज करना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, रिजल्ट को एक्सेप्ट करना आना पड़ेगा। लॉर्ड श्री कृष्ण ने कहा तेरा काम है लड़ाई लड़ना, बाकी जो होगा वो मेरे हाथ में है। हमारा काम है उस समय मेरे को क्या करना है, मेरे हाथ में इस समय ये 2nd मेरे को दिया गया है, और मेरे हाथ में केवल यही है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। अगर मैं यहां 100% हूं, मेरा मन और बुद्धि यहां पर है, तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो एंजॉय। दूसरा लास्ट STRES, स्ट्रेंथ, ताकत अपने में डेवलप करो, शक्ति डेवलप करो। और लास्ट है S का अर्थ है सरेंडर। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टूल और टेक्निक काम नहीं कर रही है, तनाव में ब्रीद आउट भी कर लिया, हंस भी लिया, हंसना भी एक रिलैक्सेशन है, ह्यूमर इज ए फिजियोलॉजी, जब मौका मिले खुद पर हंसो। आजकल लॉफिंग क्लब बन गए हैं, वो भी एक योगा है, मेथड है, लोग वहां जाकर पैसा देकर हंसते हैं, घर आकर सीरियस हो जाते हैं। हंसने का अर्थ है हर घटना को पॉजिटिव हैंडल करो। मैंने सीखा एक बार, हमारी बड़ी दादी अभी नहीं है, किचन में बैठी थी और एक बहन दूध गर्म कर रही थी, दूध पर ध्यान हट गया, दूध गिर पड़ा, वो बहन को लगा अब दादी क्या कहेंगी। दादी ने बड़ा पॉजिटिव हैंडल किया, मैंने देखा, दादी ने कहा मैंने तो सुना था सतयुग में घी दूध की नदियां बहती हैं, तूने तो कलयुग में ही बता दिया। तो पॉजिटिव उसको हैंडल करना है। और लास्ट S है सरेंडर। सरेंडर का अर्थ क्या हुआ, हमारे यहां काफी कॉमन है ब्रह्म कुमारी में, सरेंडर है, चंदा बहन सरेंडर है, बहनें सरेंडर हैं। सरेंडर का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, छोड़ दो। और गुड गुड, राइट आंसर। मैंने उसका ऐसा निकाला, सरेंडर। ईगो कहां से आता है? ये जो ऊपर का प्रोफाइल है, ऊपर का प्रोफाइल ही गड़बड़ करता है। अब पता नहीं कहां से ये आ जाता है, मैं दिखा दूंगा। तनाव आया। सरेंडर का अर्थ है सर को, अब किसी ने कुछ फेंका तो क्या होगा? मेरे को नहीं लगेगा। लगता कब है? लगता कब है? जब मैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, उसको ही स्ट्रेस जाता होता है। और जहां मैंने कहा आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके, अगर ये नहीं लग रहा है कैसे बोले कुछ ठीक नहीं है, तो लेटेस्ट अपडेट आ गया, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, बट दैट इज ओके। सड़क पर चल रहे हैं, कुछ ठीक नहीं है, तो सरेंडर, सर अंडर कर दिया। जब सरेंडर कर देते हैं तो ऊपर वाला एक्ट करता है। ऊपर वाला तभी एक्ट करता है जब हम उसको दे देते हैं। वो एक्ट नहीं करेगा जब वो हम उसको देंगे नहीं। उसकी कंडीशन एक ही रहती है कि हम उसको दे दें। भगवान होता तो तभी वो एक्ट करता है जब वो हम दे दें। लास्ट बताता हूं, फिर चंदा बहन कुछ बताएंगी। अच्छा, पहले आप बता दो, फिर मैं एंड करता फिर मैं एंड कर देता हूं।
इसलिए भगवान कहते हैं ना, तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूं, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो हो हमारी चाहना, तो वो करना है जो वो चाहते हैं।
एक बार अंगद रावण के दरबार में गया और उसने अपना पांव रख दिया। कंडीशन थी कि रावण के महारथ उस पांव को हिलाएंगे, अगर पांव हिल गया तो सीता मां को खो देंगे। उसने अपना पांव रख दिया, महारथी, कई महारथी आए पांव हिलाने को, नहीं हिला। अंगद गया वापस, उसके दोस्तों ने कहा, अरे अंगद बहुत स्ट्रेस हो गया था, अगर तेरा पांव हिल जाता तो सीता मां को तो खो दिया होता। अंगद ने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया, बोला मेरा काम था पांव रखना, पांव हिले या ना हिले टेंशन राम का था, सीता मां राम का। तो हमारा काम भी क्या है? पांव को रखना, बाकी वो कराए जो करना चाहता है। अभी हम कमेंट्री आप कराना, 5 मिनट करा देना। हाँ। मैं एक गीत बजाकर खत्म करता हूँ, फिर आप बिठा कर जीवन। आइए, लास्ट 2 मिनट बैठे बैठे करेंगे, क्योंकि कमेंट्री भी कराएंगे चंदा बहन 2 मिनट, सब टाइम पर 7:45 हम खत्म कर देते हैं। बैठे बैठे करेंगे जय, या एक प्यार का नगमा है वो, अच्छा। हाँ, गाना आप, हाँ खड़े हो जाएं और गाना भी, ये गीत बहुत पावरफुल है, और जिसको गाना है खुला गाए, कोई डरे नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, एक्सरसाइज भी करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे, साइलेंस में, क्योंकि सॉल्यूशन विदिन है। तो अब हम कुछ मिनट अंतर जगत की यात्रा करेंगे। आप सभी स्थिर होकर बैठे, जो हम आपको विचार देते जाएं उसी को अनुभव करें। कुछ समय के लिए आसपास के वातावरण से स्वयं को अलग कर दें। मेरे आसपास हो रही आवाजें हलचलों से अलग हों। मैं इस देह से भी अलग हूं तो कौन हूं, अपने आप से पूछो। भीतर से उत्तर आएगा, मैं चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा हूं, जीवन ऊर्जा हूं। मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, मस्तक के मध्य में विराजमान हूं। मैं मन बुद्धि संस्कारों सहित हूं। अब मैं अंतर चक्षु से स्वयं को देखती हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? भीतर से उत्तर आएगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मेरा मन शुद्ध हो गया है, मेरी बुद्धि दिव्य बन गई है। इसी दिव्यता में असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा शांत हूं, मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है, बुद्धि एकाग्र हो गई है। इसी एकाग्रता में अनंत शक्ति महसूस हो रही है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मुझे मनोबल प्राप्त हो रहा है। मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। इसी स्थिरता में असीम शांति का अनुभव हो रहा है, जैसे कि मैं शांति की लहरों में लहरा रही हूं। लहराते लहराते समा गए हूं, समाकर शांति से भरपूर हो गई हूं। शांति कुंड बन गई हूं। शांति के प्रकंपन मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। मेरे आसपास का वातावरण शांत हो गया है, पूर्णतः शांति, सिर्फ शांति, बस शांति ही शांति। कुछ क्षणों के लिए इसी शांति में स्थित हो जाएं। शांति की शक्ति से भरपूर होकर अब वापस लौट आइए, स्वयं को देखें, हर एक को शांत स्वरूप में देखें। मैं अब भी शांत हूं, इसी शांति से मैं हर कर्म करूंगी, शांति से सबसे व्यवहार करूंगी, यही मेरा लक्ष्य है, यही राजयोग है। ओम शांति शांति शांति।
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आ आ आ आ साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आ आ, आ, आ हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हमको डरने की क्या बात है, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आ आ आ आ, आ, आ। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है, हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ
ओम शे.